निमंत्रण देता हूं पुणे से मंदा पिसोलकर बहन। मंदा बहन आप मंच पे आ जाएं। मंदा बहन हमें संगम युग के चमत्कारी युग है ना। सबसे पहले चमत्कार तो क्या होता है? सबसे बड़ा चमत्कार बाबा मिल गए, और दूसरा चमत्कार हमें पढ़ाकर कितना महान बनाते हैं। तो आज मंदा बहन हमें और चमत्कार क्या है संगम युग के, इसकी जानकारी देंगे।
ओम शांति। आवाज आती है? आज का सब्जेक्ट बहुत चमत्कारिक है। संगम युग के चमत्कार। तो पहला चमत्कार यह है कि संगम युग में चमत्कारिक भगवान आता है। चमत्कार का ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऐसा है, चमत्करोति इति चमत्कार, संस्कृत है। और यह चमत्कार प्रकाश के स्वरूप से ही हो सकता है। तो हमें मालूम है स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा, वह भी प्रकाश स्वरूप है। तो पहला चमत्कार है संगम युग। संगम युग भी प्रकाश स्वरूप है। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। तो संगम युग में सभी जो बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा है, और संगम युग स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सभी प्रकाश है, सभी में भरपूर प्रकाश है। तो संगम युग की एक विशेषता यह है कि बहुत छोटा सा युग है, और इस युग का पता बाहर किसी भी शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, फिलोसॉफी में, स्पिरिचुअलिटी में, सारे विषयों में कहीं ही इसका रेफरेंस नहीं है कि संगम युग ऐसा ऐसा होता है, भगवान आता है वगैरह वगैरह, किसी को मालूम नहीं है। तो इस संगम युग पर हम ये चमत्कार या आश्चर्यजनक बातें क्यों सीखनी है, या इसमें क्यों अवेयरनेस रखना है कि इससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है ना। अगर ऐसी बातों का हमें ज्ञान है तो पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है, क्योंकि सभी तरफ से ज्ञान नहीं तो हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और रोज रोज अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे समय बहुत थोड़ा है, बहुत कम रोज रह गए हैं। तो ये समझकर हमें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए चमत्कार क्या क्या है ये भी देखना चाहिए। ये स्वतंत्र टॉपिक है लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए। तो संगम युग में भगवान आता ही है, और हम अपने हमारे बच्चे को इकट्ठा करके ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कराता है। तो संगम युग में ही भगवान नीचे आता है। हंसी में बाबा कहते हैं ना, सभी पूछते हैं भगवान आता है क्या। मेरी एक संस्कृत पंडित सहेली है, उसको मैं बीच बीच में ऐसे बताती हूँ, और बहुत होशियार है, बहुत सब्जेक्ट में, संस्कृत के सब्जेक्ट में उसका पंडितत्व है। तो उनको हम बताते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा अवतरण होता है। वो पूछती है बाद में कहाँ जाता है, मैं कहती हूँ ऊपर जाता है। ऐसा भगवान कभी आता और जाता है क्या? वो बोलती है सावधान, तुम कौन से ग्रुप में गई है, फंस जाएगी, सावधान। सारे विषयों में इतने फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन किसी में यह रेफरेंस नहीं है कि भगवान नीचे धरा पर आता है, बच्चों को बाप टीचर बनकर पालना पढ़ाई और प्राप्तियां कराता है, ये कहां भी नहीं है। और आप लोग कहां से ये लाया, तो ये वंडर है, उसके लिए आश्चर्यजनक है। संगम युग में और एक बात बहुत वंडरफुल है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं, छोटा सा हो बहुत छोटा हो, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अगले कल्प के लिए बहुत बहुत सौ गुना होता है। भगवान ने ही यह हमें सिखाया है, इसलिए संगम युग पर हमें कर्म करते समय बहुत सावधानी से करना है। पाप कर्म तो कभी नहीं करना है, और अच्छा पुण्य कर्म करेंगे तो उसका सौ गुना हमें सुफल, अच्छा फल मिलता है, और विकर्म करेंगे तो भी उसका कुकर्म कुफल सौ गुना मिलता है। इसलिए हर कर्म बहुत बहुत अटेंशन देकर करना है, ये एक बात हो गई। और संगम युग बहुत बहुत कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है, तो यहाँ और एक वंडरफुल बात ऐसी है कि संगम युग में स्वयं भगवान, हमारा भाग्य और समय सभी हमें मदद करने के लिए राजी है, तो हम क्यों न उनकी मदद से अच्छे कर्म करके अगले कल्प की कमाई करें। तो संगम युग पर ही हमें सारे कल्प की तैयारी करते हैं, भाग्य जमा करते हैं। ईश्वरीय एक बार ईश्वर ने ऐसे कहा था कि बच्चे तुम्हारे हाथ में कलम दी है, जितना चाहे इतना लंबी खींच लो और अपना भाग्य बना लो। तो यह भी हमें ध्यान में रखकर हमारा भाग्य बनाना है। दूसरी बात है परमात्मा, संगम युग हो गया परमात्मा। अभी परमात्मा के बारे में हम क्या बोले, सभी तो सभी को मालूम है, फिर भी आश्चर्यजनक यह है कि इतनी छोटी सी बिंदी, परमात्मा क्या है, छोटा सा बिंदु, प्रकाश स्वरूप है, और वो क्या करता है, इतने डर्टी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया का परिवर्तन श्रेष्ठाचारी सुंदर सतो प्रधान स्वर्ग में करता है। है ना वंडरफुल बात, और कितने समय में, बहुत थोड़े समय में। सारे विश्व में ये मान्यता है कि किसी का भी स्वभाव संस्कार कभी भी बदल नहीं सकता, पक्का होता है, लेकिन भगवान ने ये झूठ कर दिया है। हर एक का स्वभाव संस्कार भगवान बदल सकता है, अपने बच्चों का, हम ब्राह्मणों का हर एक को, ये मुझे लगता है कि अवेयर हो गए हैं कि ज्ञान में आने के बाद हमारे में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ऐसा लगता है किसी को, हम कैसे थे और कैसे अब बन रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, बंदर लायक थे अभी मंदिर लायक बन गए, है ना। तो ये भी बात वंडरफुल है। और परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान सारे विश्व का रचयिता, कृपालु दयालु हमारे लिए आया है, हमारे लिए इतने दूर से आकर मेहनत कर रहा है, और संगम युग में ही हमें ऐसा श्रेष्ठ मंदिर लायक देवता नर से नारायण लक्ष्मी बना रहा है, नारी से लक्ष्मी बना रहा है, तो हम क्यों ना इसका लाभ ले, ठीक है ना। तो परमात्मा का संपूर्ण परिचय, संपूर्ण स्वरूप, स्वयं भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी स्वरूप में मुझे जो याद करते हैं वही मेरे सच्चे बच्चे हैं, और वही मेरे साथ सारे कल्प में आगे बढ़ सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड स्वरूप में हमें बताते हैं। तीसरी बात है आत्मा। संगम युग हो गया, एक आश्चर्य परमात्मा हो गया, और तीसरी बात है आत्मा। मेरे सामने ये सभी बैठे हैं, शरीर धारण किए हुए आत्माएं हैं, छोटी सी बिंदी, कितनी छोटी है, 84 का पार्ट 84 जन्मों का पार्ट इसमें भरा हुआ है। ये कैसे होता है, ये भी आश्चर्य है ना, कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है आत्मा और किसी माता के शरीर में जाकर प्रवेश करती है, 9 मास के बाद बाहर आकर अपना पार्ट बजाती है। ये कौन करता है? ऊपर क्या ऐसा ऑफिस खुला है क्या, हर एक की एक एक फाइल है, ऐसा है? हर एक की एक एक फाइल है, उसके कर्म है विकर्म है, उसके अनुसार उसको भेज देना। भगवान तो कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं नहीं कुछ करता, ड्रामा करता है। ड्रामा क्या है, उसमें आत्मा कुछ है क्या, बुद्धि है, ड्रामा कैसे कर सकता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो भगवान की ये निरहंकारिता है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे नहीं मालूम, शिव बाबा करते हैं, शिव बाबा कहते हैं ड्रामा करते हैं। तो इतनी निरहंकारिता अगर हमारे में आ जाए, देही अभिमानी हम बन जाए, तो कितने कितने कर्म हम कर सकते हैं और बाबा को स्वर्ग स्थापना के कार्य में मदद कर सकते हैं, ये भी ध्यान में हमें रखना है। तो परमात्मा कैसा है, छोटी बिंदी लेकिन क्या करता है, सारे विश्व का परिवर्तन कर स्वर्ग की स्थापना करता है। यह भी किसी ही शास्त्र पुराण वेद उपनिषद किसी में भी नहीं है, हमने स्वयं ये देखा है। उसके बाद आता है संगम युग, आत्मा परमात्मा ज्ञान, स्वयं भगवान ज्ञान का सागर है, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, निराकारी निरहंकारी है और वो हमें ज्ञान देता है। इतना सुंदर इतना उत्कृष्ट ज्ञान, सारे विश्व के कौन से भी धार्मिक धर्म ग्रंथों में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, फिलोसॉफी के ग्रंथ में नहीं है, कहीं भी नहीं है। उपनिषद, वो लोग तो उपनिषद इतना अच्छा मानते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद इतना अच्छा मानते हैं, लेकिन इसमें भी ये कुछ नहीं है। तो ये जो ज्ञान है वो बहुत वंडरफुल है, उस ज्ञान से ही हम नर से नारायण बनते हैं, ज्ञान से ही हमारे सभी अवगुण अर्थात शिव बाबा आकर ये काम करता है, इसलिए भी है हो सकता है। शिव बाबा कराने वाला है, करवनहार है और हम किए जा रहे हैं, गीत है ना, उसके अनुसार हमसे वो कराता है। तो वो जो ज्ञान है तो इतना वंडरफुल है, इतना सुंदर है कि इस ज्ञान से ही हमें पता पड़ता है कि हम क्या है और क्या बन रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है। ज्ञान का एक सुंदर पॉइंट है, अब घर जाना है, सभी के मालूम है कौन सा घर जाना है, परम धाम। इसलिए क्या करना है, दुनियावी जो सभी झूठी चीजें है, झूठी काया झूठी माया, सबसे डिटैच होकर जो सच्चा शिव बाबा है, सत्य ज्ञान है, उसमें अटैच होना है, डिटैच और अटैच। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि शिव बाबा जो ज्ञान देता है मुरली द्वारा, वह दिल से सुननी है। सभी सूरज भाई वगैरह सभी हमें इसमें गाइडेंस देते हैं कि मुरली कैसी सुननी है, मुरली के पहले कैसा योग करना है, आत्मिक स्थिति में रहकर सुननी है। तो ये बाबा के डिटेल परसों रमेश भाई जी ने भी बताया था ना कि दैवी कारोबार कैसा चलता है। तो हमें ये भी अभी से रियलाइज करना है और हमें मालूम होना चाहिए कि दैवी कारोबार कैसा चलता है। तो उसमें भी सुचारू रीति से कर्म करने के लिए हमें मुरली डिटेल पढ़नी है। जानकी दादी तो शुरू में 22 बार मुरली पढ़ती थी। एक बार हमने उनको पूछा था और उन्होंने बताया, हाँ मैं पढ़ती थी, अभी 3-4 बार भी पढ़ती है। तो इस तरह हमें ज्ञान पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हमारा ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग अब खत्म हो गया है, तो ज्ञान मार्ग में हमारा ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो हमें पूर्णतः अवगत करना है। इसलिए मुरली 3-4 बार घर में पढ़कर उसके पॉइंट्स निकालकर ज्ञान योग धारणा इसके आधार से हमें करना है। अभी योग है, टाइम थोड़ा है, इसलिए शॉर्ट में हम अभी बताएंगे। तो योग क्या है सबको मालूम है। ये योग सारे विश्व में ऐसा योग किसी ने कभी नहीं सिखाया है। योगाचार्य बहुत हो गए लेकिन योगेश्वर हमारा जो परमपिता परमात्मा है उसका यह योग बहुत बहुत अच्छा है। सभी माताएं बूढ़े सभी चिल्ड्रन सभी के लिए अच्छा है। तो स्वयं को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, बस आत्मा समझना है। आत्मिक स्थिति में रहकर सब कुछ कर्म करना है, कर्मयोगी बनना है, कर्मातीत अवस्था पर जाना है कि कौन सा भी कर्म से हमारे ऊपर बंधन न आ जाए, ऐसे कर्मातीत बनना है। और कर्मयोगी कर्मातीत बनते बनते हमें ऐसे ये ज्ञान और योग के द्वारा ही धारणा करनी है। धारणा का प्रपंच भक्ति मार्ग में बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो सिखाते हैं चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, बस बच्चे पढ़ते हैं और रख देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा रोज रोज दो दो धारणाएं देकर हमसे धारणाएं कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बन रहे। ये धारणा भी बहुत वंडरफुल है, एक बहुत अच्छी धारणा है कि जब तुम्हारी मस्तिष्क की ज्योत निरंतर जागती रहेगी तब तुम देवता बनेंगे। ये कितनी वंडरफुल बात है ना। सिर्फ हमारी मस्तिष्क की ज्योत जागती रखनी है, यानी आत्मा का अवेयरनेस, आत्मा का ध्यान सदा रखना है, बस तो हम देवता बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? वंडरफुल है, वंडरफुल, सिर्फ वंडरफुल नहीं, आश्चर्यचकित है, चमत्कारिक है। तो जब हम आत्मा का अटेंशन रखते हैं तो आत्मा के सभी गुण हमारे में आ जाते हैं। कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण भरपूर हो गए तो हम सतोप्रधान बन जाते हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि सदा हमारे मस्तिष्क का जो प्रकाश है तो बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कुछ दिन पहले बाबा ने कहा है अभी अपना प्रकाश बढ़ाओ। बाबा की भाषा भी इतनी सुंदर होती है। बस इसमें क्या अर्थ है? अपना प्रकाश यानी स्वच्छ सुंदर प्रकाश कब बढ़ेगा? जब हम पवित्र, संपूर्ण पवित्र अर्थात सतो प्रधान, 7 गुणों का प्रधानत्व हमारे में आएगा तभी हम ये प्रकाश बढ़ा सकते हैं। और देवता बनने के लिए बाबा को मदद करते हैं, प्रत्यक्षता करने के लिए भी हम मदद कर सकते हैं। आगे है योग, ज्ञान योग हो गया, धारणा और सेवा। सेवा तो बहुत महत्व की है। सारे विश्व में ऐसी कोई भी संस्था या मठ या कोई भी धर्म नहीं बताते हैं कि तुम स्वयं से स्वयं संपूर्ण बनो और औरों को बनाओ। स्वयं बनना है, औरों को बनाना है। ये बहुत वंडरफुल बात ज्ञान मार्ग में है। सिर्फ स्वयं नहीं बनना है, सभी को बनाना है। इसलिए सभी को बनाने के लिए हमें ये सभी को सिखाना है बाबा क्या क्या कहता है, हमें देवता कैसे बनना है। इसलिए पहले सभी को मालूम नहीं है कि भगवान नीचे धरा पर आया हुआ है। तो भगवान कहते हैं ना अपने अपने मोहल्ले में तो बताओ। हर एक ने अभी हम 16 लाख लगभग हो गए हैं। हर एक ने सभी को ये अपने अपने मोहल्ले में सभी को ये समझाया कि भगवान आया हुआ है, वो पढ़ा रहा है, वो अपना कर्तव्य करता है, ये पढ़ाया तो भी सभी के लिए ये बहुत फलदायक होगा। सभी को ये मालूम पड़ेगा कि भगवान का ज्ञान है। क्या हो गया है? भगवान उवाचक कहा था भगवत गीता में, लेकिन भगवान कौन ये क्लियर नहीं हुआ। सभी समझते रहे कृष्ण, कृष्ण तो देहधारी है। तो ठीक है, तो अभी समय हो गया है, अभी ये अच्छा हो गया। और हमें ध्यान में रखकर वंडरफुल ज्ञान का वंडरफुल बनकर हमें वंडरफुल बनना है। आश्चर्यचकित अर्थात चमत्कार हमसे होना चाहिए और अंत में हमारा ये प्रकाश जब बहुत बढ़ेगा तो आपे ही हमसे प्रत्यक्षता